तक ये बातें स्पष्ट किया। सातवें अध्याय में भगवान ने और एक रहस्यपूर्ण बातें खोली है, और वो रहस्यपूर्ण बात क्या है? ज्ञान विज्ञान योग बताया है। क्योंकि अर्जुन को बार बार ये सवाल मन के अंदर आ रहा था कि हे प्रभु, जब भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मुझे नहीं देख सकते, मेरे कर्मों को नहीं देख सकता, ये चरम चक्षु से नहीं देख सकते हैं, तो अब अर्जुन पुनः उस विषय पर आता है कि कौन देख सकता है, कौन जान सकता है, क्योंकि अब वो समझना चाहता है। अब तक योग की बातों को समझा, लेकिन अब जब भगवान ने बार बार कहा योगी बनो, तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में एकाग्र करो, और भगवान ने कहा कि मेरा स्वरूप का को नहीं देख सकते हैं इन चरम चक्षुओं से, तो अब वो इस विषय को जानना चाहता है। तो भगवान कहते कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और उसमें भी कोई विरला ही जानता है। अब ये शब्द श्री कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है? दुर्योधन जैसे भी जानते थे, कितना शक्तिशाली समर्थ थे। और भगवान अगर कलयुग के अंत में, जो कहा गीता का ज्ञान देने आते हैं और अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करनी है, और मन मोहक श्री कृष्ण के रूप में अगर आए, तो कौन व्यक्ति उसको कार्य करने देंगे? भीड़ मचा देंगे, क्यों लगा देंगे दर्शन की क्यों लगा देंगे ना? कोई उसको कार्य करने देंगे कि नहीं देंगे? कार्य ही नहीं करने देंगे, है ना? इसलिए भगवान कहते, माना भगवान अति साधारण रूप में आता है। इसलिए कहा, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है, और उसमें भी कोई विरला जानता है, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को जान लेता है कि भगवान कौन है, कैसा है, और माया को पार कर जाता है, माया से भी पार हो जाता है। इसका मतलब भगवान इतना साधारण स्वरूप में आता है, यानी श्री कृष्ण का जो नर स्वरूप है, उस नर स्वरूप में आते हैं, जिस कारण सभी नहीं पहचानते हैं। क्योंकि अगर सभी पहचान ले उस स्वरूप में आए, तो कोई कार्य ही नहीं करने दे, भीड़ मचा देंगे। मुझे याद आता है कि कुछ सालों पहले वो गणेश जी ने दूध पिया था, है ना, आप सबको भी मालूम होगा, है ना? और उस समय क्यों ऐसी लगी थी, रात रात लोग क्यों में खड़े थे देखने के लिए, और आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर लोगों को पता चल गया था, दूसरे धर्म वालों को भी पता चल गया था कि गणेश जी ने दूध पिया, है ना? और आज तो इंटरनेट जब इतना पावरफुल हो, और भगवान आ जाए और उसको कोई कार्य करने दे, ऐसा हो सकेगा? कितनी भीड़ मचा देंगे, धक्का मुक्की हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कितना सिक्योरिटी रखना पड़े उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्यों कितनी लंबी होंगी, कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो भगवान कार्य कब करेंगे? अधर्म का नाश और सत धर्म का कार्य कोई जादू की छड़ी घुमा के तो नहीं करेगा ना, प्रैक्टिकल कर्म किया है उसने, इसीलिए उसका महत्व है। भावार्थ ये कि अति साधारण स्वरूप में आते हैं, जिस कारण कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला ही उसको पहचानता है, और अनन्य भाव से जब उसके आश्रित हो जाते हैं, तब सरलता से उसके संपूर्ण स्वरूप को जान लेता है। फिर भगवान कहते, प्रकृति पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चल रहा है, इसमें सर्वश्रेष्ठ मैं परम पुरुष हूं, परमात्मा, पुरुष माना आत्मा, तो परम पुरुष यानी परमात्मा हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है उन बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, यानी सात्विक राजसिक तामसिक ये गुणों के अधीन मैं नहीं होता। श्री कृष्ण तो फिर भी सात्विक प्रकृति के थे, है ना। परमात्मा ये गुणों के अधीन नहीं है, उनसे भी ऊपर है। फिर भगवान कहते हैं, माया द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, वे मनुष्य में अधम दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मति परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर सकता है। तो वो कहां जाते हैं अगर भगवान की शरण में नहीं आते? तो वो कहां जाते हैं? तो भगवान उस समय कहते हैं कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। अब यहां स्पष्ट होता है परमात्मा और देवता, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। किंतु अब यहां एक रहस्यपूर्ण बात ये बताते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। प्राप्ति कराने वाले वो देवताएं नहीं है, प्राप्ति कराने वाला तो परमात्मा ही है, तो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। लेकिन अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाला फल भी सीमित और क्षणिक होता है, टेम्पररी प्राप्त हो जाता है, उसमें व्यक्ति खुश हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा की शरण में जाते हैं वो संपूर्ण प्राप्ति करता है। लेकिन जिनकी बुद्धि माया के द्वारा, जिनका अपहरण हो गया बुद्धि का अपहरण, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में। कितना स्पष्ट है गीता के अंदर हर बात कि कौन देवताओं की पूजा करता है, कौन परमात्मा की शरण में जाता है और किस लिए जाता है। तब अर्जुन पुनः ये सवाल पूछता है, परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान कहते, संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को, व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ मानते हैं। वे मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान ने कह दिया, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, मैं इनके यानी श्री कृष्ण के भी, मैं इनके तीनों कालों को, भूत वर्तमान भविष्य को जानता हूं, मैं इनके भी तीनों कालों को जानता हूं। यानी श्री कृष्ण का जो साधारण स्वरूप नर स्वरूप है, इसीलिए कहा जाता नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी, अर्थात जो उसका नर स्वरूप है उस साधारण स्वरूप में परमात्मा अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं अपना कार्य करने के लिए, ताकि साधारण स्वरूप होने कारण मनुष्य पहचान नहीं सकते हैं। तब फिर दोबारा अर्जुन पूछता है, परमात्मा को कौन जान पाते हैं? भगवान कहते हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और राग द्वेषादि द्वंद के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रह करके मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, वे अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवताओं और यज्ञ के विधि का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। मैं कौन हूं, मेरा संपूर्ण रूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, सब कुछ जान जाते हैं, संपूर्ण जान लेते हैं। और इस तरह से सातवें अध्याय में भगवान ने अपनी वास्तविकता पुनः स्पष्ट किया कि मैं अपना कार्य संसार में किस तरह से करने आता हूं। आठवें अध्याय में फिर भगवान अक्षर ब्रह्म योग बताते हैं और